डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के भजन व्याख्यान 13 2024 ब्रूस वाल्ट के और टेड हिल्डेब्रांट। यह डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के और भजन की पुस्तक पर उनकी शिक्षा है। यह सत्र संख्या 13 उपदेशात्मक स्तोत्र है। बेशक हमारे पीछे पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन हमारे पास चर्च के पिता और युगों युगों के अद्भुत संत और शिक्षक भी हैं। हम इतिहास के शिखर पर हैं। हम बीथोवेन, बाख और उन सभी के अद्भुत संगीत के उत्तराधिकारी हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम इन सभी युगों के उत्तराधिकारी हैं। उन शिक्षकों के उत्तराधिकारी के लिए धन्यवाद जो हमसे पहले गए थे। धन्यवाद कि आपने हमें यह समझने की कृपा दी है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और हमें इन सभी चीजों में समझदार होने में मदद की है। जो अच्छा है उसे दृढ़ता से पकड़ने और जो बुरा है उसे उगलने में हमारी सहायता करें। हमें वह भेदभाव दो। हमारे बोलने के तरीके में हमें अनुग्रह प्रदान करें। हम जिस तरह सोचते हैं उसी तरह हमें प्यार दें। हमें अपने विषय में आनंद दो और तुम्हारे लिए स्तुति करो। तो फिर इस घड़ी के लिए हमें आशीर्वाद दें। हमें आपके वचन का उचित और लाभप्रद ढंग से अध्ययन करने के लिए आवश्यक अनुग्रह प्रदान करें। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। तथास्तु। ठीक है, हम स्तोत्र के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों को देख रहे हैं और अब हम एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण के रूप में हैं। कल हमने स्तुति स्तोत्रों को देखा। हमने सुबह के सत्र की शुरुआत स्तुति स्तोत्र, स्तोत्र 92 या धन्यवाद स्तोत्र, स्तोत्र 92 के साथ की। फिर हम याचिका स्तोत्रों पर इस विशाल सामग्री में कूद पड़े। हमने देखा कि यह प्रमुख स्वर है। अधिकांश स्तोत्र याचना या विलाप स्तोत्र हैं। यह सार्थक है कि हम ध्यान दें कि यह असामान्य नहीं है, नहीं हम कभी इससे बाहर निकलते हैं और इससे आगे जाते हैं। हम वहां रहेंगे और अपनी मरती सांस तक विलाप करते रहेंगे, मृत्यु में भी भगवान पर भरोसा रखेंगे। लेकिन यह हमारी परिपक्वता, आध्यात्मिक विकास, हमारी मुक्ति का हिस्सा है। लेकिन सबसे बढ़कर यह ईश्वर की स्तुति के लिए है, जहां वह हमारे माध्यम से मृत्यु, पाप, मृत्यु और शैतान पर अपनी विजय प्रदर्शित करता है। इसलिए हमारी निराशा के माध्यम से वह बुराई पर विजय प्राप्त करता है। उन्होंने हमें इस उद्देश्य के लिए चुना कि हम जीवित ईश्वर, विजयी ईश्वर के रूप में उनकी स्तुति कर सकें, और यह कितना सौभाग्य की बात है कि हमें इस पद के लिए चुना गया। हमने याचिका स्तोत्रों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है। इसलिए एक चीज जिस पर हमने विचार किया वह स्थितियां थीं जिनमें भजन स्वयं को पा सकते हैं। इसलिए वह स्वयं को मंदिर में पा सकता है और वह मंदिर में अपने विलाप के लिए भजन तैयार करता है, लेकिन हमेशा नहीं। कभी कभी उसे मंदिर से निकाल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वह मंदिर में वापस जाने का इंतजार करता है जहां वह भगवान की पूजा कर सके। इसलिए वह मंदिर में आध्यात्मिक जीवन के स्रोत की ओर उन्मुख है, जहां पानी स्वतंत्र रूप से बहता है, जो ताड़ के पेड़ और लेबनान के बीज को पोषण देता है, धर्मी लोगों की बात करें तो। इसलिए हमने उन विभिन्न स्थितियों को देखा। और फिर एक स्थिति शत्रु है, और इसलिए हमने यह सोचने में समय बिताया कि दुश्मन कौन है, और हमने मूल रूप से इन व्यापक नैतिक शब्दों पर ध्यान दिया कि दुश्मन वास्तव में एक आध्यात्मिक दुश्मन है। वह परमेश्वर के लोगों का शत्रु है। वह परमेश्वर के राज्य का विरोधी है। और इसलिए यह वास्तव में एक आध्यात्मिक युद्ध है। मुझे लगता है कि गुमकेल की व्याख्या के साथ हम दुश्मन पर समाप्त हो गए, क्योंकि गुमकेल इसे दूसरे के दौरान लिखे गए के रूप में देखता है कि ये भजन दूसरे मंदिर के लोगों के लिए थे। वहां कोई राजा नहीं है, कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है, और वह सोचता है कि भजनहार बीमार है। तो फिर बीमार व्यक्ति का दुश्मन कौन है? और वह एक निष्कर्ष निकालता है। यह अधिक काल्पनिक है। और वह आदिम भावनाओं के बारे में बात करता है, जिससे उसका मतलब है कि वह अपनी भावनाओं से शासित होता है, न कि सर्वोत्तम तर्कसंगत विचार से। और उसका परिणाम यह है कि शत्रु वास्तव में सताया हुआ वह है जो एक प्रकार से संकट में है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि वह यह निष्कर्ष निकाल सका। सौभाग्य से उनका अनुसरण नहीं किया गया, क्योंकि अब हम मानते हैं कि वास्तव में वे अनुकरणशील नहीं हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी सोचते हैं कि वे दूसरे मंदिर काल के हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि वे पहले मंदिर काल के राजा की नकल करते हैं। तो वह दुश्मन था। और फिर हमने विभिन्न रूपांकनों पर विचार किया। यहीं पर हम समाप्त हुए। हम अलग अलग रूपांकनों अर्थात पते के साथ समाप्त हुए। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप संकट में हो तो भगवान की ओर न मुड़ना पाप है। कि आप या तो भगवान की ओर मुड़े या किसी और चीज की ओर मुड़े। और यह हमें भजन चार की ओर वापस ले जाता है, जहां ईश्वर के अलावा किसी और पर निर्भर रहना पाप है। यह विश्वास का खंडन है। और इसलिए हमने उस अंतिम घंटे पर विचार नहीं किया, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि संकट में जैसे सैल्मन मृत्यु के बाद अपने मूल प्रजन स्थल पर लौट आता है, जैसे पक्षी सर्दियों में सूरज और गर्मी की ओर दक्षिण की ओर उड़ता है, संत अपनी मुक्ति या अपनी मुक्ति के लिए सहज रूप से ईश्वर की ओर मुड़ता है। और इसलिए मैं इसे पते में जोड़ दूंगा। हमने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। फिर मुख्य धारा तो याचिका ही है। और ठीक है, नहीं तो यह है, हमने विलाप को देखा और फिर हमने याचिकाओं को देखा। और उन सभी को फिर से दोहराए बिना हमने कहा, प्रमुख याचिका यह है कि आपको छुटकारा दिलाया जाएगा। और हमने टिप्पणी की कि यह हमें हमारी स्थिति से बाहर निकालने के लिए एक दैवीय हस्तक्षेप है। और यह एक न्यायिक अवधारणा है कि भगवान ऐसा करता है क्योंकि यह हमारे लिए सही है। और हमने इस पर अधिक विचार किया कि भजन क्या हो सकते हैं। कुछ भजन प्रायश्चितात्मक होते हैं, कभी कभी निर्दोषता का विरोध भी करते हैं। और स्तोत्र में स्तोत्रकार कभी भी इस बारे में अस्पष्टता में नहीं रहता है कि वह ईश्वर के साथ सही है या वह ईश्वर के साथ गलत है। यदि वह भगवान के प्रति गलत है तो वह प्रार्थना करता है कि भगवान उसे माफ कर देंगे। वह यह भी प्रार्थना करेगा कि ईश्वर उसे गलत से बचाएं और बचाएं। तो वह भगवान के साथ एक सही रिश्ते में रहता है। और इसलिए इसका दूसरा पक्ष यह विरोध है कि मैं निर्दोष हूं। इसलिए यह उचित है कि भगवान हस्तक्षेप करें और मुझे बचाएं। और वह उस स्थिति में आत्मविश्वास रख सकता है। ये उन चीजों की मुख्य बातें हैं जिन पर हमने उस घंटे में चर्चा की। और फिर हमने आत्मविश्वास अनुभाग और कुछ कारणों को देखा जिसमें उसे विश्वास है, और उसे विश्वास है क्योंकि ईश्वर पवित्र, धर्मी और न्यायी है। उसे भरोसा है क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है, और वह जानता है कि वह एक राजा है या वह भगवान के पक्ष में है। और हम जानते हैं कि हम कौन हैं। और इसलिए आप आत्मविश्वास रख सकते हैं। हम न केवल ईश्वर के गुणों को जानते हैं, बल्कि हम अपना इतिहास भी जानते हैं कि हम यहां रहे हैं। परमेश्वर के लोग अदन की वाटिका से यहाँ आए हैं और हम अभी भी यहाँ हैं इत्यादि। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर हमने गौर किया। हमने सांप्रदायिक विलाप के साथ कुछ नहीं किया। हम उसे छोड़ देंगे। मैं एक सांप्रदायिक विलाप स्तोत्र देखने जा रहा हूँ बाद में, स्तोत्र 44। ओह, और फिर हम धर्मशास्त्र करने जा रहे थे। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने कहा। भाग तीन धर्मशास्त्र होगा और मैंने भजनों के धर्मशास्त्र के साथ कुछ भी नहीं किया। जैसा कि मुझे याद है, मैंने कहा था, मैं इसके साथ कुछ करूंगा। हो सकता है कि मैं अनुबोधक स्तोत्रों की समस्या के बाद ऐसा करूंगा। ठीक है। इसलिए हमने याचिका स्तोत्रों को व्यापक रूप से देखा। और अब आपके नोट के पृष्ठ 164 पर उपदेशात्मक स्तोत्र, जिन्हें उपदेशात्मक स्तोत्र कहा जाता है। यह सचमुच एक मिथ्या नाम है। वे शत्रु पर श्राप देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान दुश्मन द्वारा उनके साथ किए जा रहे अन्याय का बदला लेंगे। जैसा कि हमने पिछले घंटे में देखा था, लगभग 50 प्रार्थना स्तोत्र थे। ये स्तोत्र आम तौर पर लगभग सभी 63 नहीं, बल्कि लगभग सभी अपने संकट से मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उनमें से लगभग 35 शत्रु को दंडित करने के लिए मुक्ति की सकारात्मकता से परे दूसरी ओर चले जाते हैं। यह वे स्तोत्र हैं जिनके बारे में हम अब चिंतित हैं। यह पूरा उद्देश्य है कि भगवान बदला लेंगे और दुश्मन को दंडित करेंगे। और इसलिए मैं इसे पृष्ठ 164 पर परिभाषित करता हूँ। यह वह है जिसमें भजनहार प्रार्थना करता है कि भगवान दुश्मन को दंडित करके दुश्मन द्वारा उसके साथ किए गए अन्याय का बदला लेंगे। मैं उन्हें बदला लेने की प्रार्थना नहीं कहूंगा। यह उनकी भावना का आकलन करना है। मेरा मानना है कि मैं बदला लेने के लिए कहूंगा क्योंकि मुद्दा न्याय का है और इसलिए गलत को सही करने के लिए उनका बदला लेने के लिए। न्याय की मांग है कि बुराई का बदला चुकाया जाए। मैं इसे इस प्रकार परिभाषित करना चाहूंगा। जाहिर है ये भजन उस ईसाई के लिए एक समस्या प्रस्तुत करते हैं जो पहाड़ी उपदेश के आलोक में रहता है। पर्वत पर उपदेश शिष्यों को परमेश्वर के राज्य के लिए दिया जाता है। यह राज्य को नहीं दिया जाता है। एक बड़ी गलती है जो ईश्वर के पितृत्व के भाईचारे और उदारवाद के सभी मनुष्यों के भाईचारे से उत्पन्न होती है। वे पहाड़ी उपदेश की नैतिकता को अपनाने और इसे राज्य पर लागू करने का प्रयास करते हैं। तो राज्य दूसरा गाल आगे कर देगा। राज्य तलवार का प्रयोग नहीं करेगा। चर्च और राज्य की नैतिकता बहुत अलग है। चर्च की नैतिकता वह क्रूस है जहां आप अपने दुश्मन के लिए मरते हैं। राज्य की नैतिकता एक तलवार है, रोमियो अध्याय 12। उसने गलतियों का बदला लेने के लिए तलवार दी। यदि आप चर्च और राज्य तथा नैतिकता के विभिन्न रूपों, जिनके साथ हम यहां निपट रहे हैं, के बीच अंतर नहीं करते हैं, तो यह बड़े पैमाने पर भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो भजनहार को पुराने नियम में वह भेद नहीं था क्योंकि यह एक धार्मिक राज्य था। इसलिए तूने परमेश्वर के राज्य को इसराइल के राज्य से अलग नहीं किया। वे एक दूसरे के साथ व्यापक थे। आपने उस प्रकार का भेद नहीं किया जो हमें चर्च के आध्यात्मिक निकाय होने से मिलता है। हम अब एक राजनीतिक संगठन नहीं हैं। हम राज्य के साथ मिलकर रहते हैं और गलतियों को सुधारने के लिए हम राज्य पर निर्भर हैं। हम इसे अपने हाथ में नहीं लेते। हम उम्मीद करते हैं कि राज्य न्याय को बरकरार रखेगा। वह रोमियो 12 और 13 है। न्याय को कायम रखना राज्य की जिम्मेदारी है। लेकिन चर्च को सताया जाता है। तो सवाल यह है कि चर्च इस तरह के उत्पीड़न पर कैसे प्रतिक्रिया देता है? क्या हम वैसा ही जवाब देते हैं जैसा उन्होंने पुराने नियम में दिया था और प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे दुश्मनों को दंडित करेंगे? यह मेरे लिए पहाड़ी उपदेश से मेल नहीं खाता है जहां भगवान ने कहा था, जहां यीशु कहते हैं, यदि वे तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारते हैं तो दूसरा भी उनकी ओर कर दो। वह यह भी कहते हैं, बुराई का विरोध मत करो। वह कहते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो तुम पर अत्याचार करते हैं। वह यह कहकर सताता है कि परमेश्वर उनके बच्चों को चट्टानों से कुचल देता है। उनका तात्पर्य उनके लिए उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है और क्रूस पर स्वयं की प्रार्थना उन्हें क्षमा करने के लिए है। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, जो वास्तव में वे नहीं जानते। मुझे लगता है कि वे मूर्ख हैं और वे अंधे हैं। जब वे उसे पत्थर मारकर मार रहे थे तो स्तिफनुस की यही प्रार्थना थी कि वे जो करते हैं उसके लिए उन्हें क्षमा करें। इसलिए एक साथ रहना, दूसरा गाल आगे करना और उनके लिए प्रार्थना करना और आपसे प्यार करना कठिन है। यह कहा गया था कि तुम्हें अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए और अपने शत्रु से घृणा करनी चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ, अपने शत्रु से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो यही वह समस्या है जिसका हम सामना कर रहे हैं। अब जब मैं इस तरह की समस्या का सामना करता हूँ तो मैं आमतौर पर हर तरह के समाधान के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ। मैं इसे समाधान के रूप में कैसे हल कर सकता हूँ? मेरे लिए यह बाइबल की दृष्टि से सही है। इस व्याख्यान के शेष भाग में मैं यही करने का प्रयास करने जा रहा हूँ कि समाधान ढूंढने का प्रयास करूँ। एक ईसाई के रूप में हमें पुराने नियम को नए नियम के साथ सामंजस्य बनाने के बारे में कैसे सोचना चाहिए और हमें एक ईसाई के रूप में अपने लिए भजनों का उपयोग करने और इन भजनों के भीतर इस मूल भाव को समझने के बारे में कैसे सोचना चाहिए। तो वह समस्या को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। सबसे पहले अस्वीकार्य समाधान यह है कि मैं वहां नाम देता हूं। वे कहते हैं कि ये वास्तव में प्रार्थनाएं नहीं हैं, ये भविष्यवाणियां हैं कि भगवान, यह कहने के बजाय कि भगवान उन्हें दंडित करें। वे कहते हैं कि यहोवा उन्हें दंड देगा। उन्होंने इसे एक भविष्यवाणी, एक वादे के रूप में पढ़ा कि यही होने वाला है। इसलिए वे उन्हें याचिका के रूप में नहीं पढ़ते हैं। यही समस्या का एक समाधान है। मैं वहां पाठकों को देता हूं। ऐसे कुछ लोग हैं जो ईसाई सिद्धांत के इतिहास में इसे मानते हैं। इसका कारण यह है कि हिब्रू भाषा में, जिसे हम जूसिफ कहते हैं, जो कि एक कमांड फॉर्म है, आप वास्तव में अक्सर उसके बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। क्या वह सजा दे सकता है? बनाम जिसे हम विशिष्ट भविष्य कहते हैं, वह सजा देगा। भाषा में यह आश्चर्यजनक अस्पष्टता है, लेकिन अक्सर अनुवादक को निर्णय लेना पड़ता है, चाहे वह इच्छा हो या तथ्य का बयान। जब मैंने अपना हिब्रू व्याकरण लिखा था तो आपको इसी तरह की चीज से जूझना पड़ा था। मेरे द्वारा व्याकरण लिखने का कारण यह है कि मैं टिप्पणियां लिखने के लिए खुद को तैयार कर रहा था और मुझे एहसास हुआ कि कमेंट्री में जाने से पहले व्याकरण पर इतना काम करना पड़ता था कि मैं बस बैठ गया और एक व्याकरण लिखा और मुझे इसके लिए पृष्ठभूमि दी। इसलिए मैं इसे एक परिचय कहता हूँ, लेकिन यह आमतौर पर जर्मन परिचय है। ठीक है, तो किसी भी मामले में, लेकिन कुछ ऐसे रूप हैं जो प्रौद्योगिकी में शामिल हुए बिना स्पष्ट रूप से न्यायिक हैं, लेकिन कुछ रूप हैं उनमें कोई अस्पष्टता नहीं है। तो यह समाधान संतोषजनक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें जूसिव हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में अनुवादकों का अनुमान लगभग 99% सही है। वे वास्तव में प्रार्थनाएं हैं कि ईश्वर ऐसा करेगा और प्रार्थना कर रही है कि ईश्वर ऐसा करेगा। पृष्ठ 165। दूसरा समाधान यह है कि वे बिल्कुल स्पष्ट हैं, वे सही नहीं हैं। वे गैरीसाई हैं और हमें उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। यह पूरी तरह से शैतानी से शुरू होता है और वे हर तरह से गलत हैं। वास्तव में वे पूरी तरह से पवित्र नहीं हैं। मैं आपको यह कहने का ग्रेडेशन देता हूं कि यह वास्तव में सही नहीं है। कुछ कहते हैं कि वे वास्तव में गलत हैं और कुछ कहते हैं कि वे आंशिक रूप से गलत हैं, लेकिन जब आप सब कुछ समाप्त कर लेते हैं तब भी आप अंततः गलत ही होते हैं। तो मैं आपको कुछ अतिवादी वक्तव्य देता हूँ। यह पुराने नियम के वैज्ञानिक अध्ययन किटेल द्वारा है। उनका कहना है ये मतलबी लोग हैं जो केवल विजय और बदले की प्यास के बारे में सोचते हैं। यह काफी मजबूत बयान है। अब इससे भी अधिक आश्चर्य की बात है सीएस लुईस, जिन्हें इन भजनों से परेशानी है। मैं उसे उद्धृत करता हूँ, और भी अधिक शैतानी। एक श्लोक में अन्यथा सुंदर 137 है, जहाँ उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया गया है जो बेबीलोन के बच्चे को उठाकर उसके दिमाग को फुटपाथ पर पटक देगा। वे वास्तव में शैतानी हैं, लेकिन हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए जिन्होंने उन्हें ऐसा बनाया है। यह मेरे लिए प्रेरणा का बहुत ऊंचा दृष्टिकोण नहीं है। सीएस लुईस के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। वह चर्च के महान धर्मशास्त्रियों में से एक है, लेकिन मेरे अनुसार उसके पास पवित्र शास्त्र के बारे में पर्याप्त ठोस दृष्टिकोण नहीं है। मैं यह कभी नहीं लिख सका कि वे शैतान हैं और यह गलत है। मैंने अभी अभी एलिस्टेयर हंटर की पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द सोल्स पढ़ना समाप्त किया है। वह कहता है मैं तुम्हें ये दूंगा। वह इनमें से बहुत से भजन उद्धृत करता है और वह यह कहकर इसकी शुरुआत करता है यदि आपके पास इसके लिए पेट है, और वह बस वह इस पुस्तक में एक पूर्ण उदारवादी है। अधिक उदारवादी यह है कि आपके पास बियर्डस्ले का कथन है। मैं आपको वहां बयान दूंगा। डेविड आध्यात्मिक रूप से गोधूली में है। खैर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी किसी चीज में हमें रूपक का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ा और स्पष्ट होना चाहिए कि गोधूली से आपका क्या मतलब है। इसकी अलग अलग तरीकों से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि आप अभी भी अंधेरे में हैं और यह अभी भी सही नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा, या यह जॉन ब्राइट है। यह पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित व्यक्ति है, फिर भी एक ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर की आत्मा से अलग हो गया है। अब यदि वह परमेश्वर की आत्मा से अलग हो गया है तो वह निश्चित रूप से परमेश्वर की आत्मा में नहीं बोल रहा है। वह अनिवार्य रूप से कह रहा है कि वे ईश्वर से प्रेरित नहीं हैं, क्योंकि जब वह ऐसा कह रहा है तो उसके पास वास्तव में ईश्वर की आत्मा नहीं है। तो वह भगवान के लिए एक आदमी है, लेकिन वह मानवीय भावना में बोल रहा है, जो यह कहने का एक तरीका है कि वे गलत हैं। अच्छा, इसे कहने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन यह अभी भी गलत है। मैं वहां नहीं जा सकता। यह अब अल्बर्ट बांस से है। ये बहुत बहुत रूढ़िवादी हैं। वास्तव में भजनहार के मन में जो घटित हुआ और जो हमारे लिए संरक्षित है, वह मानव स्वभाव का आंशिक रूप से पवित्र चित्रण है। तो इसे कहने का यह संपूर्ण प्रकार का मध्यम तरीका वास्तव में पवित्र नहीं है। यह वास्तव में पवित्र आत्मा का नहीं है। हम यहां गोधूली क्षेत्र में हैं, और यह मेरे लिए पर्याप्त निर्णायक नहीं है। मेरी सोच बिल्कुल स्पष्ट है और मुझे इधर उधर घूमना पसंद नहीं है। मुझे यह गोधूली और आंशिक रूप से पसंद है। आइए कहें, क्या वे सही हैं? क्या वे गलत हैं? क्या वे सिद्धांत के लिए लाभदायक हैं या वे सिद्धांत के लिए अलाभकारी हैं? क्या वे शिक्षा दे रहे हैं या शिक्षा नहीं दे रहे हैं? मैं इसे साफ करना चाहता हूं, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। मेरी आपत्ति यह है कि यह धार्मिक रूप से निरंतर है। यह प्रेरणा का एक बुरा सिद्धांत है। और स्वयं भजनों में कोई संकेत नहीं है कि आत्मा ने पवित्र शास्त्र के इस भाग को सेंसर किया है। वास्तव में बाइबल में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि परमेश्वर की आत्मा उन्हें सेंसर कर रही है। दूसरे शब्दों में ईश्वर व्यवस्थाओं को बदल सकता है। उदाहरण के लिए पीटर के साथ जब वह कहता है अशुद्ध भोजन खाओ तो यह एक जबरदस्त बदलाव है। लेकिन आपको यह स्पष्ट रूप से कहने से कुछ नहीं मिलता कि यह ईश्वर की ओर से नहीं है। तो वह नंबर दो है। इसमें थोड़ा और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। वास्तव में वे सभी दुश्मन को नष्ट करने का हिस्सा हैं। यह वास्तव में दुश्मन को नष्ट करने के पुराने नियम में पवित्र युद्ध के मूल भाव का हिस्सा है। परमेश्वर ने उन्हें युद्ध में जाने का आदेश दिया था और उनका दायित्व था कि वे परमेश्वर के राज्य की स्थापना के लिए युद्ध में जाएं। और मैं इसे उस संपूर्ण विचार से अलग नहीं देखता जहां मूसा ने प्रार्थना की थी कि प्रभु शत्रुओं को तितर बितर कर देंगे। इस प्रकार की प्रार्थनाएं पैगंबरों में भी पाई जाती हैं। तो यह सब शत्रु को नष्ट करने वाले ईश्वर का हिस्सा है। यह पुराने नियम के ताने बाने में है। नया नियम इन अशुद्ध प्रार्थनाओं का हवाला देता है और वे इन्हें काफी दिलचस्प ढंग से अनुमोदन पूर्वक उद्धृत करते हैं। इसलिए उदाहरण के लिए प्रेरितों के काम 1:20 में क्योंकि भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है उसका डेरा उजाड़ हो जाए और उसमें कोई रहने न पाए और कोई दूसरा उसका स्थान उसका पद ग्रहण कर ले। और वह इसे यहूदा पर लागू करता है जिसे हटाया जाने वाला है। और वह अनुमोदन पूर्वक यहूदा के संदर्भ में उस भजन का हवाला देता है। और वह स्तोत्र की पुस्तक से अपना स्थान लेने वाले किसी अन्य को भी उचित ठहराता है। पांचवा, आपको नए नियम में विशेष रूप से सर्वनाश में ऐसी ही प्रार्थनाएं मिलती हैं। जब उसने पांचवीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन और उनके द्वारा दी गई गवाही के कारण मारे गए थे। उन्होंने ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, तू कब तक पवित्र और सच्चा रहेगा जब तक तू प्रियवी के निवासियों का न्याय करके हमारे खून का पलटा न लेगा? अब ये वे लोग हैं जो पहले ही गौरव प्राप्त कर चुके हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका बदला लिया जाएगा। और स्वर्ग में वे अभी भी यह प्रार्थना कर रहे हैं। वे इसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। वे अभी भी इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, मैं पहाड़ी उपदेश और क्रूस पर यीशु के शब्दों के साथ क्या करूं? लेकिन आप देख सकते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि आप यह नहीं कह सकते कि वे शैतानी हैं क्योंकि मैं इसे स्वर्ग में ही पाता हूं। तो और नए नियम में कुछ शत्रुओं के प्रति यह गंभीर व्यवहार। पॉल क्रोधित होने के लिए कहते हैं और मुझे लगता है कि उसका मतलब नैतिक आक्रोश है। मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर नैतिक आक्रोश नहीं है तो यह गलत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि नैतिक आक्रोश उचित है। मेरी समस्या यह है कि इससे अधिक नैतिक आक्रोश नहीं है। मैं यह नहीं समझ सकता कि ईसाई धर्म प्रचारक कुछ उम्मीदवारों के प्रति नैतिक आक्रोश के बिना उन्हें कैसे वोट दे सकते हैं। तो हां माइक, इसे लो और इसे आज ही लागू करो, जैसे कि ISIS वहां ईसाइयों को मार रहा है। बड़े पैमाने पर हमारे पास मध्य पूर्व में IBS वाले लोग हैं और यह अविश्वसनीय है कि मृत्यु और विनाश और नैतिक पीड़ा की मात्रा, निर्दोष लोग, विशेष रूप से आप जानते हैं हम कुर्दिस्तान क्षेत्र में हैं। और आप कैसे देखते हैं कि इस दिन और युग में हम प्रार्थना कर रहे हैं, ओह, उनके खून का बदला सेना द्वारा लिया जाएगा। उस समय प्रभु के शत्रुओं के विरुद्ध हमारी प्रार्थनाओं में हमारे संबंध में आपके क्या विचार होंगे? हाँ, यह इसे ठीक नीचे लाता है। फिर से मुझे चर्च और राज्य के बीच अलगाव करना होगा, और इसलिए मैं दो टोपियां पहनता हूँ। मैं चर्च की टोपी पहनता हूँ और मैं राज्य की टोपी पहनता हूँ। और जैसे ही मैं चर्च की टोपी पहनता हूँ, मेरी पहली प्रतिक्रिया उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करना है। वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रेम से उत्तर देना चाहता हूँ और उन्हें मसीह के पास लाना चाहता हूँ। मैं उन्हें झकझोरना नहीं चाहता। मैं करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह गलत है। मैं अपने भगवान का अनुसरण करना चाहता हूँ जिन्होंने कहा, दूसरा गाल आगे कर दो। इसलिए मैं एक ईसाई के रूप में उनका विरोध नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं राज्य से अपेक्षा करता हूँ। यह सही व्यवस्था स्थापित करने के लिए, धार्मिकता के लिए स्थापित किया गया है। मैं संयुक्त राष्ट्र से अपेक्षा करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें सक्षम होकर कदम उठाएगा और हत्यारों को दंडित करेगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो नैतिक आक्रोश के साथ धार्मिकता को कायम रखेंगे और दुश्मन को उस हद तक दंडित करेंगे जितना वे ऐसा करने में सक्षम हैं। तो यह मेरी सोच होगी और मैं इस पर कैसे प्रतिक्रिया दूंगा। ठीक है, इसका दूसरा पक्ष यह है कि ठीक है, एक और अवधारणा यह है कि मैं यह कह रहा हूं कि मैंने उन लोगों को क्यों लिया जो यह कहना चाहते हैं कि यह भविष्यवाणी है। मुझे इसे खारिज करना होगा, जो लोग कहते हैं कि वे वास्तव में गलत हैं। मैंने उत्तर देने का प्रयास किया कि मैं यह क्यों नहीं कह सका कि वे गलत थे। दूसरी ओर मैं तीसरी बात पर आता हूँ कि हम उन्हें सीधे उपयोग करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान दुश्मन को पकड़ लेंगे, जो मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। और इसलिए इसका एक उदाहरण देने के लिए, जब मैं मूल रूप से इस सामग्री के बारे में सोच रहा था, मैं ओरेगॉन में था और यह 1982 की बात है। इसलिए मैं अब कुछ वर्षों से इसके बारे में सोच रहा हूँ। तो वैसे भी मैं ओरेगोनियन पढ़ रहा था और यह वह समय था जब ईएम पैसले संयुक्त राज्य अमेरिका और अलेक्जेंडर हैग आ रहे थे। तो यह जिमी, आप जानते हैं, प्रारंभिक रीगन प्रशासन के समय से चला आ रहा है, और अलेक्जेंडर हैग ला रहे थे, रक्षा सचिव इयान पैसले ला रहे थे। तो वैसे भी यह बॉब जोन्स है। ओह, और अलेक्जेंडर हैग इयान पैसले का विरोध कर रहे थे और बॉब जोन्स इयान पैसले का पक्ष ले रहे थे, और वह अलेक्जेंडर हैग और वह जो कर रहा था उसका विरोध कर रहा था। तो उन्होंने यही कहा, मुझे आशा है कि आप सभी बॉब जोन्स के छात्र प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उसे हरा दें। वह सिकंदर है, कूल्हे और जांघ, हड्डी और मज्जा, हृदय और फेफड़े, और उसके पास जो कुछ भी है वह उसे जल्दी और पूरी तरह से नष्ट कर देगा। यही वह बॉब जोन्स छात्रों, एक इंजील छात्र, स्कूल से कह रहा था कि उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, यह नहीं कि भगवान अलेक्जेंडर हैग को बचाएंगे, बल्कि वे उसे कूल्हे और जांघ आदि पर झपकी देंगे। यह मेरे लिए गैर ईसाई है, तो मैं उसे भी अस्वीकार करता हूँ। मेरे लिए यह यीशु की शिक्षा के साथ असंगत है और यह यीशु के अभ्यास के साथ भी असंगत है, और मुझे वह चर्च में नहीं मिला। मैं उस रास्ते पर नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए मैंने इस पर विचार मंथन किया और मुझे पता है कि मैं क्या स्वीकार नहीं कर सकता। तो मैं क्या स्वीकार कर सकता हूँ? और चूंकि हम सभी विकास की प्रक्रिया में हैं, इसलिए मैं इसके माध्यम से अपना रास्ता सोचते हुए अगले भाग को समाधान की ओर कहता हूँ। इससे मुझे मदद मिलेगी। और अब हम पृष्ठ 167 पर हैं, समाधान की ओर। पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वह यह है कि ये संतों द्वारा हैं और वे परमेश्वर के राज्य के लिए कष्ट उठा रहे हैं, और वे घोर अन्याय सह रहे हैं। दूसरे शब्दों में उनकी आलोचना करने से पहले उनकी जगह पर कदम रखें और देखें कि वे घोर अन्याय का सामना कर रहे हैं। मैंने सोचा कि यह डेरेक किडन 160 द्वारा किया गया था। क्षमा करें, हाँ, खैर किसी भी कीमत पर नोट 366 रोरी प्रेस्ट। हाँ, मैं उसके बारे में भूल गया। वह एक क्षेत्र में मेरा छात्र था जिसने स्तोत्र में शत्रु पर एक थीसिस लिखी थी। वैसे भी वे कहते हैं अधिकांश टिप्पणीकार भजनों को सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के सहज दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। बहुत कम लोगों ने पूरी तरह से अकारण नग्न आक्रामकता और घोर शोषण की पीड़ा का अनुभव किया है। यह संदेहास्पद है कि क्या दुश्मनों को जवाब देने पर ऐसी अलग अलग चर्चा स्पष्ट रूप से बुरे इरादों वाले लोगों के सामने होगी। दूसरे शब्दों में वह उनकी घोर अन्याय की स्थिति के प्रति सहानुभूति रख रहा है। हम यहाँ बैठ सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं। हम इस खूबसूरत घर में आराम से इस पर बहस कर सकते हैं जिसमें हम खुद को पाते हैं। हमें उस दुनिया में प्रवेश करने की जरूरत है ताकि हम इस बात की सराहना कर सकें कि वे किसके खिलाफ हैं। मुझे लगता है कि यह एक सार्थक कहावत है। यह इसे हल नहीं करता है लेकिन यह मदद करता है। मुझे लगता है कि अगला वाला हमें मदद करता है। प्रार्थनाएं नेक और न्यायपूर्ण हैं। दूसरे शब्दों में यह कि ईश्वर गलत को सही करेगा धार्मिक है और उचित है। वे सिर्फ प्रार्थनाएं हैं, इसलिए ये प्रार्थनाएं मानती हैं कि सिविल अदालतें या तो न्याय को कायम नहीं रखेंगी या न्याय को कायम नहीं रख सकती। दूसरे शब्दों में न्याय को कायम रखना राज्य का काम था। लेकिन दाऊद के मामले में क्या होता है जब राजा शाऊल की तरह राजा होता है और वह न्याय का समर्थन नहीं करता है तो वह क्या करता है? वह किधर मुड़ता है? उसे न्याय कहाँ मिलेगा? वह न्याय को कायम रखने के लिए न्याय के देवता की ओर देख रहा है। इसलिए ये प्रार्थनाएं ईश्वर से न्याय बनाए रखने के लिए कह रही हैं। मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखती। वास्तव में मुझे इसकी पुष्टि अवश्य करनी चाहिए कि ईश्वर न्याय का समर्थन करता है और वह बुराई को दंडित करता है। ये प्रार्थनाएं एक उल्टी सीधी दुनिया को सही दिशा में स्थापित करने के ईश्वर के चरित्र के अनुरूप हैं। वे इसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे यह सिद्धांत के लिए लाभदायक लगता है। यह उत्तम सिद्धांत है। मुझे वह मददगार लगता है। वे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की पुराने नियम की चिंता के अनुरूप हैं। निहितार्थ स्तोत्रों में न्याय के बारे में बहुत उच्च दृष्टिकोण शामिल है। दूसरे शब्दों में वे वास्तव में विश्वास करते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है और वे नाराज होते हैं और जब न्याय लागू नहीं होता है तो वे गलत सोचते हैं। यहाँ सीएस लुईस मुझे काफी मददगार लगता है। वह अपने रिफ्लेक्शंस ऑन द सोन्स में कुछ ऐसा कहता है जो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बुतपरस्त साहित्य में ऐसी अभिव्यक्तियों की कमी है क्योंकि जैसा कि वह कहते हैं यहूदियों की सही और गलत पर मजबूत पकड़ थी। वह लिखते हैं अगर हमें भजन के कवियों को इस आधार पर माफ करना है कि वे ईसाई नहीं थे तो हमें बुतपरस्त लेखकों में भी इसी तरह की और इससे भी बुरी बात की ओर इशारा करने में सक्षम होना चाहिए। शायद अगर मैं अधिक बुतपरस्त साहित्य जानता होता तो मैं ऐसा करने में सक्षम होता। लेकिन जो मैं जानता हूँ थोड़ा ग्रीक थोड़ा लैटिन और पुराना नॉर्स वास्तव में बहुत कम। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ यानी कि वह ऐसा नहीं कर सकता। वह इसे बुतपरस्त साहित्य में नहीं पा सकता है। मैं उनमें कामुकता अत्यधिक क्रूर असंवेदनशीलता ठंडी क्रूरताएं देख सकता हूँ लेकिन यह क्रोध या घृणा की विलासिता नहीं। किसी की पहली धारणा यह है कि यहूदी अन्य जातियों की तुलना में कहीं अधिक प्रतिशोधी और कटु थे। तो बुतपरस्तों उनका साहित्य कामुक है। यह हिंसक है, लेकिन यह नैतिक रूप से क्रोधित करने वाला नहीं है। अब लुईस ने कुछ वर्ष पहले रिफ्लेक्शंस ऑन द स्तोत्र लिखा था। बुतपरस्त साहित्य के बारे में उन्होंने जो कहा वह मेरी समझ से हमारे साहित्य के लिए सच है, कामुकता और हिंसा से भरा हुआ है। जैसा कि बिल बेनेट ने अपनी पुस्तक में बताया है, नैतिक आक्रोश की कमी है। हमारे अंदर नैतिक आक्रोश की कमी का कारण यह है कि हमारे पास कोई ईश्वर नहीं है जो सही और गलत का समर्थन करता हो। हमने अपना ईश्वर ले लिया और हमारे पास कोई पूर्ण मानक नहीं है। इसलिए सापेक्षता के युग में पूर्ण मानक के बिना आप नैतिक आक्रोश के साथ कैसे बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि कुछ गलत है। अब कोई भी निश्चित नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत। हम नहीं जानते कि पाप क्या है। हम अब पाप के बारे में बात नहीं करते। तो यदि आपके पास पूर्ण मानक नहीं है तो आप में नैतिक आक्रोश कैसे हो सकता है। तो लुईस ने बुतपरस्त साहित्य के बारे में जो कहा मुझे लगता है कि वह हमारे समाज के बारे में सच है। उन्होंने वहां जो वर्णन किया वह आज मेरे लिए अद्भुत है। पृष्ठ 31 इस प्रकार उनकी पुस्तक में, इस प्रकार पृष्ठ 167 के नीचे क्रोध की अनुपस्थिति, इस प्रकार क्रोध की अनुपस्थिति, विशेष रूप से उस प्रकार का क्रोध जिसे हम आक्रोश कहते हैं, मेरी राय में सबसे खतरनाक लक्षण हो सकता है। अर्थात नैतिक आक्रोश का अभाव एक चिंताजनक लक्षण है। यदि यहूदियों ने बुतपरस्तों की तुलना में अधिक कड़वाहट से शाप दिया तो मुझे लगता है यह कम से कम आंशिक रूप से था, क्योंकि उन्होंने सही और गलत को अधिक गंभीरता से लिया था। यदि हम उनकी रेलिंग को देखें तो हम पाते हैं कि वे आमतौर पर क्रोधित होते हैं, केवल इसलिए नहीं कि ये चीजें उनके साथ की गई हैं, बल्कि इसलिए कि वे स्पष्ट रूप से भगवान के साथ साथ पीड़ित के प्रति भी गलत या घृणा करते हैं। धर्मी प्रभु का विचार, जो निश्चित रूप से ऐसी चीजों से उतना ही नफरत करता होगा जितना वे करते हैं, जो निश्चित रूप से इसलिए अवश्य करता है, लेकिन वह कितनी भयानक देरी करता है, न्याय करता है या बदला लेता है, यह हमेशा रहता है, भले ही केवल पृष्ठभूमि में। तो वे धर्मी हैं और वे बस यही दूसरी बात है जो मैं कह रहा हूं। वे आवश्यक हैं कि हम में पूर्ण नैतिकता हो। हमारे अंदर नैतिक आक्रोश है जो सही और गलत की स्पष्ट समझ से आता है। लेकिन हमारे युग में जहां सापेक्षता है, हम अब निश्चित नहीं हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। युवा अब नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हमने बाइबल को स्कूल से बाहर कर दिया है और हमने अपने समाज में अपनी निरपेक्षता खो दी है। तीसरा, नया नियम ईश्वर के न्याय को कायम रखता है। भगवान न्याय के लिए प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। यह प्रभु की प्रार्थना है, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, जो न्याय को कायम रखना है। यीशु ने कहा और उन्होंने विधवा एक अन्यायी न्यायाधीश के बारे में बात की। वह बेशर्म दुस्साहस के साथ जज को तब तक परेशान करती रही जब तक उसने सही काम नहीं कर दिया। वह न्याय चाहती थी। यीशु कहते हैं और क्या परमेश्वर न्याय न करेगा उसके चुने हुओं के लिए जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उन्हें टालता रहेगा। मैं तुमसे कहता हूं वह देखेगा कि उन्हें शीघ्र न्याय मिले। हालांकि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या हम पृथ्वी पर विश्वास पाएंगे कि परमेश्वर ऐसा करेगा। तो वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि भगवान न्याय को कायम रखेंगे। यह वही है जिसके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। इसलिए यीशु इन भजनों को सेंसर नहीं कर रहे हैं। तो मुझे यह एक उपयोगी दूसरा कदम लगता है। वे न केवल सही और गलत और नैतिक आक्रोश के बारे में चिंतित हैं, बल्कि यीशु इस बात पर कायम हैं कि भगवान गलतियों का बदला लेंगे। और फिर मैथ्यू 7:23 की तुलना भजन 6:8 से करें। और वह अंतिम निर्णय की बात करता है। वह कहता है, तब वे अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन भोगेंगे। वह अनुमान लगाता है कि निर्णय भविष्य में होगा, अनंत दंड होगा और अनंत जीवन होगा। तो हम इसके बारे में और अधिक बताएंगे। लेकिन भगवान, मैं जो कहना चाह रहा हूं वह यह है कि यीशु न्याय की धारणा को कायम रखते हैं। यह न्याय के समय से पहले उनके उद्धार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के विरोधाभासी नहीं है। एक और बात, सी प्रार्थनाएं वफादार हैं। वे अपने विरुद्ध हुए घोर अन्याय का बदला लेने के लिए स्वयं पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा करते हैं। दूसरे शब्दों में ये विश्वास की प्रार्थनाएं हैं। वे अपना बदला नहीं ले रहे हैं, वे बदला लेने के लिए भगवान पर निर्भर हैं। वे विश्वास के महान कथन हैं। बाइबल उस व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करेगी जो अपना बदला लेता है। हमने भजन 8:2 में देखा कि शत्रु और आत्मबदला लेने वाले को खत्म करना जो ईश्वर पर निर्भर रहने के बजाय इसे अपने हाथों में ले लेता है। तो वे वफादार हैं, वे भरोसा कर रहे हैं कि भगवान बदला लेंगे, क्योंकि वे अपने लिए पवित्र लोगों के लिए बदला नहीं ले सकते। वे राज्य पर निर्भर हो सकते हैं, वे परमेश्वर पर निर्भर रह सकते हैं, लेकिन दाऊद अपना बदला नहीं लेगा। घोर अन्याय के बावजूद भी वह शाऊल से बदला नहीं लेगा, क्योंकि शाऊल का अभिषेक हो चुका था और वह परमेश्वर की संपत्ति था। भगवान को अपनी संपत्ति का निपटान करना पड़ा, वह भगवान की संपत्ति का निपटान नहीं कर सका, इसलिए वह इसे अपने लिए नहीं कर सका। उसे भगवान पर निर्भर रहना पड़ा। ये किसी को श्राप देने के निहितार्थ नहीं है बल्कि ईश्वर पर निर्भर प्रार्थनाएं और याचिकाएं हैं, और यह पूरी तरह से पुराने नियम के धर्मशास्त्र के अनुरूप है। किडन का कहना है कि डेविड की जिंदगी में यही देखने को मिलता है। डेविड की तुलना में व्यक्तिगत हमले के तहत उदारता में सक्षम कुछ ही लोग थे, जैसा कि उसने शाऊल और अबशालोम के प्रति अपने रवैये से साबित कर दिया था कि शिमी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब सारा को महसूस होता है कि इब्राहिम ने उसके साथ अन्याय किया है, तो वह कहती है, या तो हाग्गै को यहाँ से बाहर निकाल दो या मैं चली जाऊंगी। देखिए, वह ऐसा नहीं करती। प्रभु ने मेरे बीच न्याय किया। वह गलत को सही करने के लिए इसे भगवान को सौंप देती है। वह एक प्रार्थना है। वह इस विश्वास वाली महिला है कि ईश्वर गलत को सही करेगा। वह इसे अपने हाथ में नहीं लेती। इसके विपरीत दुष्ट लोग लेमेक की तरह अपना बदला लेते हैं। और उसने कहा, यदि परमेश्वर ने हाबिल का पलटा लिया तो वह उस गलती का 7 गुना पलटा लेगा। वह बदला लेगा। ठीक है, आओ देखें, वह कैन का वंशज है। क्षमा, हाँ, खैर आइए इसे देखें। मेरे पास उत्पत्ति 4 का थोड़ा सा हिस्सा है जहां मैंने श्लोक को उलझा दिया है। आइए उत्पत्ति 4 पर जाएं और इसे सीधे समझें। लेमेक, हम वहां हैं। उत्पत्ति 4:23 लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, आदा और जेकर, मेरी बात सुनो। लेमेक की पत्नियों, मेरी बातें सुनो। मैंने मुझे घायल करने के लिए एक आदमी को मार डाला है, मुझे घायल करने के लिए एक जवान आदमी को मार डाला है। यदि कैन का बदला 7 बार लिया गया तो लेमेक का 77 बार। तो वह ऐसा करता है, उसने एक आदमी को मार डाला और उसने खुद बदला लिया। उस पर और अधिक काम करने की जरूरत है। मेरी टिप्पणी यहां होनी चाहिए, लेकिन किसी भी मामले में लेमेक को अपना बदला लेने के लिए सेंसर किया जा रहा है। हाँ ठीक है। एडुआर्डो पृष्ठ 169। अब तक मैंने कहा है वे धर्मी हैं और वे न्यायपूर्ण हैं। मैंने कहा वे वफादार हैं और उनकी प्रार्थनाएं इस विश्वास पर आधारित हैं कि ईश्वर गलत को सही करेगा। और डी वे नैतिक हैं। वे भगवान से सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए कह रहे हैं और वह नैतिक है। इसलिए मैं यह भजन कहता हूँ, हे यहोवा, हे मेरे धर्मी परमेश्वर, मेरे धर्म के अनुसार, मेरी खराई के अनुसार मेरा न्याय कर। हे धर्मी परमेश्वर, जिसकी खोज मन और हृदय दुष्टों की हिंसा को समाप्त करते हैं और धर्मियों को सुरक्षित बनाते हैं। इसलिए वे शिक्षाप्रद हैं क्योंकि वे नैतिक हैं। वे सही गलत में अंतर करते हैं। अब आज समस्या यह है कि हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते और वे स्पष्ट रूप से पहचानते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। और मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह अन्य सभी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अलग बात बताना उचित होगा कि वे नैतिक हैं। एक पृष्ठ 170। वे धर्मी, वफादार, नैतिक हैं और वे ईश्वरीय हैं, अर्थात वे ब्रह्मांड के नैतिक प्रशासक द्वारा धर्म के राज्य की स्थापना की आशा कर रहे हैं। सांसारिक राजा ने स्वर्गीय राजा से उससे अधिक कुछ नहीं मांगा जितना स्वर्गीय राजा ने उससे मांगा था, अर्थात परमेश्वर ने राजा से कहा कि वह न्याय बनाए रखे, उत्पीड़ितों का उद्धार करे और उत्पीड़क को दंड दे। यही न्याय है, उत्पीड़ित को मुक्ति दो, उत्पीड़क को दंड दो। और राजा को यही करना था। राजा भगवान से उससे अधिक कुछ नहीं मांग रहा है जितना भगवान ने उससे मांगा था, और वह भगवान से पूछ रहा है, राजाओं के राजा के रूप में मैं आपसे न्याय बनाए रखने के लिए कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह एक अलग तरह के समाधान के लायक है। अगला, प्रार्थनाएं ईश्वर केंद्रित हैं। उनका लक्ष्य सभी की नजरों में अपनी धार्मिकता और न्याय को प्रकट करने के लिए ईश्वर की प्रशंसा देखना है। दूसरे शब्दों में, यदि आपके पास एक प्रशासक प्रशासन है जो कानून का पालन नहीं करता है और न्याय का समर्थन नहीं करता है, तो यह उस प्रशासन की प्रतिष्ठा को धूमिल करता है। और इसलिए ये प्रार्थनाएं ईश्वर केंद्रित हैं और वे प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरी दुनिया यह देखेगी कि दुष्टों को दंडित करके इसराइल एक धर्मी भगवान की पूजा करता है। इसलिए वे एक ईश्वर केंद्रित उद्देश्य के लिए चिंतित हैं, जो कि ईश्वर को उसकी धार्मिकता प्रकट करने के लिए प्रशंसा करते हुए देखना है। जो लोग मेरे समर्थन से प्रसन्न होते हैं, वे खुशी और खुशी से जय जयकार करें। वे सदैव कहते रहें, प्रभु महान हो, जो अपने सेवकों की भलाई से प्रसन्न रहता है। मेरी जीभ दिन भर तेरे धर्म की चर्चा और तेरी प्रशंसा करती रहेगी। इसलिए वे भगवान की प्रतिष्ठा के लिए चिंतित हैं। और इसके बदले में अगली बात यह है कि वे इंजीलवादी हैं, अर्थात उनका लक्ष्य सभी पुरुषों या महिलाओं को यह देखने देना कि भगवान पूरी पृथ्वी पर सबसे ऊंचे हैं, पृथ्वी का रूपांतरण करना है, कि मंदिर में अन्य राष्ट्रों से दूत आएंगे और वे देखेंगे कि इसराइल का परमेश्वर न्याय का समर्थन करता है, तो क्या वे कभी शर्मिंदा और निराश होंगे? वे अपमान में नष्ट हो जाएं? वे जान लें कि तू ही, जिसका नाम यहोवा है, सारी पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान है। मेरा आशय वहां एक उद्धरण डालने से था। एक और बात, वे न्यायप्रिय हैं, वे वफादार हैं, वे धर्मी हैं, वे धर्म शासित हैं, वे धर्म केंद्रित हैं, वे राजनीतिक हैं, आशा करते हैं कि दुनिया देखेगी कि इसराइल के पास एक धर्मी ईश्वर है और प्रार्थनाएं वाचापूर्ण हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संत के खिलाफ गलत को भगवान के खिलाफ गलत के रूप में देखा जाता है कि वे भगवान के साथ हैं। इसलिए जब उन्हें सताया जा रहा है तो भगवान को सताया जा रहा है क्योंकि वे भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भजन संहिता में कहा गया है, मैं तेरे कारण तिरस्कार सहता हूँ, शर्म से मेरा चेहरा ढक जाता है। मैं अपने भाइयों के लिए पराया हूँ, अपनी माँ के बेटे के लिए पराया हूँ, क्योंकि तेरे घर के लिए धुन मुझे भस्म कर देती है और जो तेरा अपमान करते हैं उनका अपमान मुझ पर पड़ता है। तो जो गलतियां की जा रही हैं वे भगवान के प्रति गलतियां की जा रही हैं। मेरा सुझाव है कि प्रार्थनाएं ओरिएंटल हों, वे भाषण के अलंकारों से भरे हुए हैं और मुझे लगता है कि कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। इसके अलावा हमें समझना चाहिए और यह जय के अधीन है कि ये निंदा सशर्त हैं, यानी सारी सजा सशर्त है, निर्णय की सभी भविष्यवाणियां सशर्त हैं। भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती। आप शायद यिर्मयाह अध्याय 18 में प्रसिद्ध मंदिर उपदेश पर एक नजर डालना चाहेंगे, यदि आप मेरे साथ वहां जाना चाहते हैं। वह कुम्हार के घर जाता है और उसे पता चलता है कि आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन अगर लोग बदल जाते हैं तो भविष्यवाणी भी बदल जाती है। मैं यह कह रहा हूं कि अगर लोग बदल जाते हैं तो प्रार्थना बदल जाती है। वे सभी सशर्त हैं कि यदि शत्रु को पश्चाताप करना पड़े तो ये अभिशाप हटा दिए जाएंगे, वे वहां नहीं होंगे। लेकिन यहां भविष्यवाणी है। यह यहोवा का वचन है जो यिर्मयाह के पास पहुंचा। यह वह वचन है जो यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा। कुम्हार के घर जाओ और वहां मैं तुम्हें अपना संदेश दूंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। मैंने उसे चाक चलाते हुए देखा, लेकिन जिस बर्तन को वह मिट्टी से आकार दे रहा था वह उसके हाथों में खराब हो गया था। तो कुम्हार ने इसे एक दूसरे बर्तन में बनाया जैसा कि उसे सबसे अच्छा लगा। तब यहोवा का यह वचन मुझसे कहा कि इस कुम्हार की नाई मैं तेरे साय इसराइल से नहीं कर सकता। यहोवा की यही वाणी है, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी रहती है वैसे ही तू मेरे हाथ में है इसराइल। यदि मैं किसी समय यह घोषणा करूं कि किसी राष्ट्र या राज्य को उखाड़ फेंकना है, तोड़ देना है और नष्ट कर देना है, और यदि वह जाति जिसे मैंने चिताया है अपनी बुराई से पश्चाताप करे तो मैं पछताऊंगा और उस पर वह विपत्ति न डालूंगा जिसकी मैंने योजना बनाई थी, और यदि किसी अन्य समय मैं घोषणा करूं कि राष्ट्र या राज्य का निर्माण और रोपण करना है, और यदि वह मेरी दृष्टि में बुरा काम करे और मेरी बात न माने तो मैं उस भलाई पर फिर विचार करूंगा जो मैंने उसके साथ करने का इरादा किया था। इसलिए भविष्यवाणी हमेशा किसी व्यक्ति की प्रतिक्रिया पर निर्भर होती है, ताकि यदि यह कयामत की भविष्यवाणी करे और लोग पश्चाताप करें तो कयामत घटित न हो। यदि यह अच्छाई की भविष्यवाणी करता है और लोग बुराई की ओर मुड़ जाते हैं तो अच्छाई घटित नहीं होगी। हम अक्सर कहते हैं कि वादे और भविष्यवाणियां निश्चित होती हैं, उनका पूर्ण होना निश्चित है। वे हमेशा इस बात पर निर्भर रहते हैं कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे। और मैं सुझाव दे रहा हूं कि प्रार्थना में हाँ वह न्याय करेगा, लेकिन समझें कि यदि वे पश्चाताप करते हैं तो भगवान का आशीर्वाद उन पर प्रवाहित होगा। मुझे यह समझने में मददगार लगा। वे सीमेंट में नहीं बने हैं कि ईश्वर उन्हें बिना किसी परवाह के झकझोर देगा। उनके पास पश्चाताप करने का मौका है। ओह, मुझे लगता है ऐसा होता है। मुझे सचमुच इस पर संदेह है। हाँ, यह सही है। सही, मैं जानता हूं कि यह उचित है, यह भयावह है। तुम सही हो माइक, फिर प्रार्थना को दैवीय दया और अनुग्रह की अवधारणा के साथ द्वंद्वात्मक तनाव में आयोजित किया जाना चाहिए। हमेशा दया और अनुग्रह होता है और प्रार्थनाएं राजनीतिक होती हैं। मैं इसे उसी के साथ जाने दूंगा। मेरा निष्कर्ष, ये प्रार्थनाएं सही सिद्धांत के अनुरूप हैं और वे सिद्धांत और सुधार और धार्मिकता के निर्देश के लिए लाभदायक हैं, ताकि हम हर अच्छे काम के लिए तैयार हो सकें। मैं इन प्रार्थनाओं के लिए भगवान को धन्यवाद देता हूँ। वे शिक्षित हैं, वे नैतिक हैं, वे वफादार और भरोसेमंद हैं, वे उसकी स्तुति के लिए ईश्वर उन्मुख हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यीशु की शिक्षा के आलोक में वे हमारे युग के लिए उपयुक्त हैं। क्षमा प्रार्थना के अलावा न्याय के लिए प्रार्थना नए इसराइल के लिए अनुपयुक्त है। फैसले को अब फैसले के अंतिम दिन तक के लिए टाल दिया गया है। चर्च अब निर्णय नहीं देता, यह भविष्य के लिए भगवान पर भरोसा करता है। आपके पास वह प्रसिद्ध चित्रण है। मुझे लगता है कि आप यशायाह 61 के जॉन 4 में यीशु के उपयोग से परिचित हैं। नहीं, ठीक है, यह अंश है, लेकिन यशायाह और यीशु द्वारा इसके उपयोग के बीच एक जबरदस्त विरोधाभास है। खैर, आइए इस पर एक नजर डालें। यह यशायाह 61 और श्लोक 1 से 4 तक सही है। नहीं, श्लोक 1 से 3 और 4 तक ठीक है। सर्वशक्तिमान प्रभु की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि प्रभु ने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे टूटे हुए दिलों को बांधने, बंदियों के लिए आजादी की घोषणा करने, कैदियों के लिए अंधेरे से रिहाई की घोषणा करने, प्रभु के पक्ष के वर्ष और हमारे भगवान के प्रतिशोध के दिन की घोषणा करने के लिए भेजा है। हम वहीं रुकेंगे। अब ल्यूक 4 की ओर मुड़े और देखें कि यीशु इसे अपने लिए पहचानने में कैसे उपयोग करते हैं। ल्यूक 4:18 और उस मार्ग को खुला रखें। आप देखेंगे कि यीशु इसे कैसे संशोधित करते हैं। ल्यूक अध्याय 4 और श्लोक 18-20। यह नाजरेत के मंदिर में उनका पहला उपदेश है। प्रसंग हमें श्लोक 16 में मिलता है। वह नाजरेत गए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। सप्त के दिन वह अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में गया। वह पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक उसे दी गई। उसे खोलकर उसने वह स्थान पाया जहां लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे कैदियों के लिए आजादी और अंधों के लिए दृष्टि की वापसी की घोषणा करने, उत्पीड़ितों को आजाद करने, प्रभु के अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करने के लिए भेजा है। फिर उसने पुस्तक को लपेटकर वापस दे दिया। क्या आप विरोधाभास देखते हैं? क्या आपने देखा कि उसने इसे कहां काटा? उसने यशायाह 61 पढ़ा और वह पद के बीच में ही रुक गया। और वह श्लोक 61 में कहता है, उसे मुझे टूटे हुए दिलों को बांधने, बंदियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करने, बंदियों के लिए अंधेरे से मुक्ति, प्रभु के अनुग्रह के वर्षों की घोषणा करने के लिए भेजा गया था। और उसने किताब पलट दी। उसने नहीं पढ़ा और हमारे परमेश्वर के प्रतिशोध का दिन, यह भगवान के प्रतिशोध का दिन नहीं है। वह परमेश्वर का प्रतिशोध लेने नहीं आया था। वह रुक गया। बहुत शिक्षाप्रद, यह प्रतिशोध का दिन नहीं है, यह ईश्वर की कृपा का दिन है। यह वह दिन है जब हम मोक्ष प्रदान करते हैं। यह मोक्ष का समय है, मोक्ष का दिन है। हम परमेश्वर के अनुग्रह के दिन की उस समझ और उस संदर्भ में रहते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे दुश्मनों को मुक्ति मिलेगी, उन्हें उनकी जेल और उस सारे अंधकार से मुक्ति मिलेगी और भगवान का अनुग्रह मिलेगा। और हम भविष्य के लिए ईश्वर के प्रतिशोध पर भरोसा करते हैं कि वह वही करेगा जो उचित है। तो हम विश्वास में रहते हैं। तो मेरा कहना यह है कि वे सैद्धांतिक रूप से सही हैं, लेकिन चर्च के लिए व्यावहारिक रूप से अनुपयुक्त हैं। धर्मग्रंथ की अपनी समझ से मैं यही निष्कर्ष निकालता हूँ। अब हम पाप और पापी में अधिक स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं। श्लोक 2, राज्य आज आध्यात्मिक रूप से आता है, शारीरिक रूप से नहीं। हम कोई सांसारिक राज्य स्थापित नहीं कर रहे हैं। हम निर्णय भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। यही अन्यायी जज था। मैं 5वें नंबर से बहुत खुश नहीं हूं। मैं इसे वहीं जाने दूंगा और इसलिए मैं व्याख्यान वहीं रोक दूंगा। और इसलिए मुझे लगता है कि इससे मुझे स्तोत्र में एक बहुत ही कठिन समस्या के समाधान में मदद मिलती है। ठीक है, तो यह भावपूर्ण भजनों पर व्याख्यान है। खैर, मैं भी नहीं सुनता। मेरे पास 2 श्रवण यंत्र हैं, ब्रिटनी। तो मुझे इसे सुनने के लिए यहां आना पड़ा। तो आपके विश्लेषण और आपके द्वारा प्राप्त योग्यताओं के आधार पर आप बेबीलोनियों के बारे में भजन 137 को कहां रखेंगे? धन्य है वह जो बालक को कोड़े। आप इसे अपने ACL के पैमाने पर कहां रखेंगे? क्या यह ईश्वरीय है? क्या यह ईश्वर केंद्रित है? क्या यह थोड़ा सा है कि आप इसे कहां से प्राप्त करेंगे? मैंने तुम्हें बहुत धन्यवाद नहीं दिया, ब्रिटनी। यदि आप चाहें तो अपने उन नोट्स को पीछे पलटें जिनमें मैं वास्तव में समग्र रूप से भजन का वर्णन करता हूं। और यह पृष्ठ 162 पर है। तो सवाल यह है कि मैं भजन कहां रखूंगा? मैं भजन 162 को कैसे संभालूंगा? और हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके आलोक में मैं इसे कैसे समझ सकता हूं? यहां भजन है। हम बाबुल की नदियों के किनारे बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रोने लगे। वहां हमने चिनार के पेड़ों पर अपनी वीणाएं लटकाई क्योंकि वहां हमारे बंदी गाने मांगते थे। हमारे उत्पीड़कों ने खुशी के गीत मांगे। उन्होंने कहा, सियोन के गीतों में से एक हमारे लिए गाओ। और अब हम जानते हैं कि वे क्या हैं। हम परदेश में रहकर प्रभु के गीत कैसे गा सकते हैं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो क्या मेरा दाहिना हाथ अपना कौशल भूल जाएगा? यदि मैं तुम्हें याद न करूं तो मेरी जीभ तालू से चिपक सकती है। यदि मैं यरूशलेम को अपना सर्वोच्च आनंद नहीं मानता। हे यहोवा, याद कर जिस दिन यरूशलेम का पतन हुआ उस दिन एदोमियों ने क्या किया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, इसे तोड़ दो, इसे इसकी नींव तक तोड़ दो। बेबीलोन की बेटी उस बेटी द्वारा हिब्रू में शहर के लिए शब्द सिर्फ एक स्त्रीलिंग है। और इसलिए शहर स्त्रीलिंग है और बेटी कहलाते हैं। और हम बाबुल की बेटी हुआ करते थे। यह भ्रामक है। तो NIV ने बेबीलोन की बेटी का अनुवाद किया। यही इरादा है। बेबीलोन की बेटी विनाश के लिए अभिशप्त। धन्य वह है, अर्थात हम धन्य की चर्चा करते हैं, अर्थात वह है जिसे भविष्य में पुरस्कार मिलेगा। क्या ही धन्य वह है जो तूने हमारे साथ जो कुछ किया है उसके अनुसार तुझे बदला देता है। परंतु धन्य है वह जो ऐसा करता है। क्या ही धन्य वह है जो तेरे बालकों को पकड़कर चट्टानों पर पटक देता है। श्लोक 1-4 तक हमारे पास विलाप की मंडली है। सच तो यह है कि वे बेबीलोन में गाना गाने से इनकार कर रहे हैं। और इसका कारण यह है कि यह वास्तव में सुअरों के सामने मोती फेंकने जैसा होगा। यह ऐसा नहीं करेगा। अब उनके 3 निहितार्थ हैं कि परमेश्वर स्वयं के विरुद्ध, एदोमियों के विरुद्ध और बेबीलोनियों के विरुद्ध दंड देगा। पहले स्वयं के खिलाफ, उसके हाथ के खिलाफ कि उसमें खेलने का कौशल नहीं रहेगा, और उसकी जुबान के खिलाफ कि अब उसमें बात करने और गाने की क्षमता नहीं रहेगी। सियोन के विनाश पर खुशी मनाने के लिए एदोमियों के विरुद्ध और सियोन को पुनः स्थापित करने के लिए बेबीलोन के विरुद्ध। मैं स्लैग की टिप्पणी छोड़ दूंगा। पृष्ठ 164 तू नोटा बेने। सियोन पृथ्वी पर परमेश्वर की बचाने वाली उपस्थिति का स्थान है, वही मोक्ष का ठिकाना है। वे नष्ट करना चाहते हैं, वे उपहास करते हैं, वे उस स्थान का उपहास कर रहे हैं जिसे भगवान ने पृथ्वी पर आशीर्वाद लाने के लिए चुना है। यही इसका संदर्भ है। उनके निहितार्थ में जो जुनून धड़कता है वह महज राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि ईश्वर के राज्य के लिए उत्साह है। और यही वह है जिसमें परमेश्वर के राज्य के प्रति उसका उत्साह है। एक और ओरिएंटल युद्ध ने न तो महिलाओं को और न ही बच्चों को बख्शा। प्रार्थना है सख्त न्याय की। प्रार्थना अभ्यास का उद्देश्य आगे समाप्त करना था। इसका उद्देश्य आगे का बदला समाप्त करना था। लेकिन अगर निंदा करने वाला पश्चाताप करता है तो कुछ अपवाद भी हैं। तो दूसरे शब्दों में, जब बेबीलोनियों ने इसराइल को नष्ट कर दिया तो उन्होंने उनके बच्चों को भी नष्ट कर दिया। यह प्राच्य युद्ध की प्रकृति है। सख्त न्याय इसका दूसरा पक्ष होगा। मैं जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन यह युद्ध की प्रकृति है। इसके अलावा हमें यह समझना होगा कि कुछ अपवाद भी हैं। दूसरे शब्दों में, व्यवस्था के अनुसार यह कहता है कि जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें उस देश में ले आता है, तब तुम बहुत सी जातियों अर्थात हित्तियों, गर्गशियों, एमोरियों, कनानियों, परिज्जियों, हिव्वियों और को अपने अधिकार में लेने और अपने सामने से निकालने के लिए उसमें प्रवेश करते हो। हे यबूसियों, तुमसे बड़ी और सामर्थी सात जातियां। और जब यहोवा तुम्हारे परमेश्वर ने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया है और तुमने उन्हें हरा दिया है, तो तुम्हें उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। आप सहस्तित्व में नहीं रह सकते। तुम्हें दुष्टों का समूल नाश करना चाहिए, उनके साथ कोई संधि नहीं करनी चाहिए और उन पर कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। वह पुराना नियम है। पृथ्वी को बुराई से मुक्त करो और उनके साथ कोई संधि मत करो। लेकिन ध्यान दें कि जब वे वास्तव में जमीन पर आते हैं तो क्या होता है। मैं जिस चीज की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं वह यहोशूदो है। आपके पास राहाब वेश्या कनानी है और वह पश्चाताप करती है। वह इज़राइल के भगवान को स्वीकार करती है। कानून ने उसे ध्यान में नहीं रखा। उसे दया प्राप्त हुई। यह राष्ट्रवाद नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। और जब उसने जासूसों को छिपाया जो कि उसका विश्वास प्रभु में था, न कि बाल और कनानी देवताओं में, तो उसे वाचा परिवार में लाया गया। दिलचस्प बात यह है कि आकान यहूदी, जो यहूदा के गोत्र के भीतर था, जब उसने बेबीलोनियन परिधान रखा और पवित्र युद्ध के निर्देशों टोरा का उल्लंघन किया, तो यह लूट का युद्ध नहीं था, यह धर्म की ओर से युद्ध था। इसलिए जब उसने इसका उल्लंघन किया और इसका उपयोग अपने स्वयं के प्रचार, अपनी संपत्ति और कपड़ों की प्रतिष्ठा आदि के लिए किया, तो उसे मौत की सजा दी गई। वेश्या बच गई। यहूदी को मौत की सजा दी गई। इसलिए आपको कानून को कानून की रोशनी में पढ़ना होगा। देखिए, समस्या यह है कि कुछ लोग बस कानून के अनुसार चलते हैं। कानून ही संपूर्ण कथा है। जो कुछ हुआ उसके आलोक में आपको कानून की व्याख्या करनी होगी। व्यवस्था विवरण 22 के अनुसार कानून यह है कि डेविड और बत्शेबा दोनों को मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। वह कभी चिल्लाई नहीं, मैं निर्णय नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि बाइबिल एक लड़खड़ाहट है। तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैं केवल यह कह रहा हूँ, कानून के अनुसार उन्हें मौत की सजा दी जानी चाहिए थी। व्यभिचारिणी और व्यभिचारी को मौत की सजा दी जानी चाहिए थी, लेकिन डेविड ने पश्चाताप किया। वह उरियाह को जीवन वापस नहीं दे सका, वह बत्शेबा को नष्ट नहीं कर सका, पवित्रता वापस नहीं दे सका, लेकिन उसे माफ कर दिया गया। और मैं बेबीलोनियों से कहूंगा, यदि किसी ने मन फिराया और अपनी बुराई से मन फिराया, तो इसराइल ने उनकी कोई हानि नहीं की। यह एक अन्यायपूर्ण बात थी। वे सिर्फ उनके मंदिर को नष्ट करने और उनकी चांदी प्राप्त करने और उनका सोना प्राप्त करने और उन्हें गुलाम बनाने के लिए उन्हें लूट रहे थे। मेरा मतलब है, यह सिर्फ दुष्ट था, दुष्ट। यदि उनमें से किसी ने पश्चाताप किया, तो यह प्रार्थना लागू नहीं होगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सभी शाप इस तथ्य पर आधारित हैं कि आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। और इसलिए आम तौर पर बच्चे अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं, और हमारे अंदर जो भी नफरत होती है वह आम तौर पर इसलिए होती है क्योंकि बच्चों को एक निश्चित संदर्भ में बड़ा किया जाता है या उन्हें चर्च के भीतर प्यार के संदर्भ में बड़ा किया जाता है। तो ब्रिटनी, मेरे पास यह तरीका है जो उस अत्यंत कठिन भजन को समझने में सहायक हो सकता है। इससे मुझे मदद मिलती है। तो सवाल पूछने के लिए धन्यवाद। हाँ एडवार्डो, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उनका मतलब यह है कि आपका राज्य तलवार के साथ आएगा। मुझे लगता है कि उनका मतलब यह है कि आपका राज्य आपके लोगों की वफादार प्रार्थनाओं और पवित्र आत्मा के इस कार्य के माध्यम से आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वह यह कह रहे हैं कि वे लाने जा रहे हैं, यह इस्लाम होगा। हम तलवार से राज्य नहीं लाते, हम इसे प्रार्थना और अनुग्रह के साथ लाते हैं। तो हमारा प्रतीक चिन्ह है क्रॉस। इस्लाम का प्रतीक तलवार है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। यह उनके बीच एक मौलिक अंतर है। बिल्कुल, आप इसे चूक नहीं सकते। और नौसैनिक थॉमस जेफरसन वह हैं जिन्होंने इस्लाम को समझा, और उन्होंने समझा कि वे हमारे दुश्मन थे। मैं समझता हूं कि नौसैनिकों के कॉलर इतने ऊंचे होने का कारण यह है कि ट्यूनिशियाई अपनी तलवारों से उनके सिर नहीं काट सकें। मैं तो यही समझता हूं। वह इस्लाम के खतरे को समझते थे। वह युद्ध में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उस समय वे प्रति वर्ष $225,000 की भारी रकम वसूल रहे थे। जबरन वसूली का पैसा था, और थॉमस जेफरसन के पास आखिरकार यह था। और इसीलिए हम सोचते हैं कि मोंटेजुमा के हॉल से लेकर त्रिपोली के तट तक हम अपने देश की लड़ाई समुद्र की तरह जमीन पर भी लड़ेंगे। मेरे मन में कोई विचार नहीं था, लेकिन यह मददगार है। धन्यवाद। बहुत अच्छा डॉक्टर वॉके, एक और अनुवर्ती प्रश्न यदि मैं कर सकता। पहले हम चर्च की प्रतिक्रिया बनाम राज्य की प्रतिक्रिया के बीच अंतर के बारे में बात कर रहे थे, तो यह एक मसीह संस्कृति का प्रश्न है। ठीक है, मान लीजिए यदि आपके पास कोई ईसाई है जो राष्ट्रपति पद पर है, जिसे ISIS के खिलाफ लड़ना है, तो आप क्या करेंगे? इसलिए मैं हमेशा यह सवाल पूछने के लिए उत्सुक रहता हूँ। मेरा मतलब है, क्या आप चर्च के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि आप एक ईसाई हैं? भले ही आप उस स्थिति में चर्च का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, आप राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो लेकिन क्या यह उस पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नैतिक दुविधा उत्पन्न करता है क्योंकि आप एक ईसाई हैं? मेरे लिए यह नहीं होगा। मेरे लिए यह होगा, मैं राज्य की ओर से एक राजनीतिक कार्यालय के लिए चुना गया था। यदि मुझे किसी चर्च का बिशप चुना जाता और मैं उस लोगों का प्रतिनिधित्व करता, तो यह एक अलग कहानी होती। लेकिन मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में हूँ और इसलिए मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में अभिनय कर रहा हूँ। इसलिए मुझे तलवार का उपयोग करने में कोई अस्पष्टता नहीं होगी। मैं सोचता हूँ कि यदि मुझमें क्षमता है और मैं गलत देखता हूँ तो तलवार का प्रयोग न करना गलत होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वे सभी इस्लाम की रक्षा करने के लिए बहुत तैयार हैं और सभी ईसाइयों की रक्षा नहीं करने के लिए भी तैयार हैं। क्यों? 250,000 यजीदी और कुर्द और इराक में लोग। आप जानते हैं, चर्च की आबादी 2 मिलियन से घटकर 3 लाख से भी कम रह गई है। यह वहां के विश्वासियों के लिए एक भयानक बात रही है। यह सही है। यह मध्य युग में चर्च का इतिहास रहा है। पोप थे, उन्होंने चर्च की ओर से तलवार का इस्तेमाल किया और उन्होंने संतों को मार डाला। वह चर्च के भीतर था। इसके परिणामस्वरूप उनका हॉलैंड और बेल्जियम के बीच विभाजन हो गया। बेल्जियम बड़े पैमाने पर रोमन कैथोलिक है क्योंकि उन्होंने सभी प्रोटेस्टेंटों को मार डाला। लेकिन हम यहां हैं। यह चर्च का इतिहास रहा है। यह तो बस इसका एक हिस्सा है। यह ईश्वर का गहन विचार है और वह जीतेगा। यही हमारी आशा है। हाँ, यही कारण है कि आप इस पर गंभीरता से सोच सकते हैं। स्कूल इसी बारे में है। ओ हाँ, मुझे लगता है वे हैं। मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है। मुझे लगता है हमें शैतान का विरोध करना होगा। मुझे यकीन नहीं है कि मैं यहां द्वंद्व बनाना चाहता हूं। मैं शैतान का विरोध करने जा रहा हूं, लेकिन मैं यह भी जानूंगा कि भगवान को ही उसे हराना है। हम आध्यात्मिक युद्ध में लगे हुए हैं। इफिसियों 4 के अंत में हम परमेश्वर के सारे हथियार पहन लेते हैं। जो चीज पूरी चीज को कवर करती है वह प्रार्थना है। इसलिए मैं उस पूरे कवच को पहनना चाहता हूं, विश्वास का आध्यात्मिक कवच और आत्मा का प्रकार, लेकिन मुझे इसे प्रार्थना में पहनना होगा ताकि यह विजयी हो सके। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र संख्या 13 उपदेशात्मक स्तोत्र है।